ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सीरिया में बदलते हालात और पश्चिम एशिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान।
एम्बेसडर त्रिगुणायत जी, हम आज सुबह देखा विद्रोहियों ने सीरिया को राष्ट्रपति बशार अल असद के शासन से मुक्त घोषित कर दिया। ऐसे सोचना है कि राष्ट्रपति बशार अल असद दमास्कस छोड़ के भाग गए। आप ये घटनाक्रम को कैसे देखते हैं?
इस घटनाक्रम को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बड़ा इतना तेजी के साथ जिस तरह से घटा, उससे कई सारे फैक्टर्स जो हैं उनका एक रोल पता लगता है कि कैसे रेजीम फॉल होता है। जैसे हमने देखा, ये कोई नई घटना नहीं है। हमने देखा कि जैसा बांग्लादेश में हुआ, या हमने तालिबान का भी देखा अफगानिस्तान में, तो जो चीज बहुत तेजी के साथ हुई है रिजीम फॉल, ये अरब स्प्रिंग का एक तरह कंटिन्यूएशन था। यहाँ पे आपको याद होगा कि 2011 में अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी कोशिश की थी कि असाद के रिजीम को गिरा दिया जाए, और लिबिया से था, मैं उस वक्त वहीं काम करता था एज एम्बेसडर, लीबिया से भी काफी फोर्सेस भेजी गई यहाँ लड़ने के लिए। लेकिन उस सब के बावजूद, चूंकि रशिया का इंटरवेंशन था, सपोर्ट था, हमने देखा कि असाद बच गए और 10-12 साल और चलते रहे इस तरह से। तो 2015 से कम रशिया और ईरान का पूरा सपोर्ट इनको रहा है। लेकिन इस वक्त हमने देखा, उसके बाद भी पूरा कंट्रोल जो था पूरे सीरिया के ऊपर असाद की फोर्सेस का नहीं था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में ये जो ग्रुप है जिसको हयात तहरीर अल शाम बोलते हैं, HTS, और दूसरी तरफ सीरियन नेशनल आर्मी है जो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है, या SDF फोर्सेस जो है, सीरियन डिफेंस फोर्सेस, इनके ग्रुप के अंडर में काफी हिस्सा है, बल्कि ऑयल जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो भी उनके अंडर में थे। इस बीच में 90% से ज्यादा जो सीरियन लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और 13 मिलियन से ज्यादा है वो सीरियंस जो हैं वो जॉर्डन, लेबनान और टर्की में आश्रित बने हुए हैं, ऐसे रिफ्यूजीज हैं। हालत जो है वहां पर डे टू डे बड़ी खराब है, और इन पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है कि असाद गवर्नमेंट ने कोशिश बिल्कुल नहीं की कि किस तरह से जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं उनको मिलाया जाए या वहां की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। तो ये एक फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने देखा कि ये इतनी आसानी के साथ जो ये ग्रुप्स हैं ये मार्च करते हुए बड़े बड़े सिटीज जैसे अलेप्पो से इदलिब, अलेप्पो, हमा, होम्स एंड दमस्कस तक पहुंच गए, और प्रेसिडेंट बशार असाद को वहां से भागना पड़ा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पर गाजी, उन्होंने कहा है कि वो जो नई गवर्नमेंट है उसका कोऑपरेट करेंगे और ट्रांसफर ट्रांजिशन पूरी तरह से करेंगे। तो अगर शांतिपूर्वक ढंग से ट्रांजिशन होता है तो एक अच्छा रहेगा वहां पर, अगर नहीं होता है तो एक सिविल वॉर फिर से शुरू हो जाएगा जो पूरे रीजन के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है।
राजीव त्रिगुणायत, आप पश्चिम एशिया पर कड़ी आप नजर रखते हैं, आपने वहां पे काम भी किया है एज इंडियाज एम्बेसडर टू लीबिया। ये जो असद शासन का पतन हुआ है, इनका असर समग्र वेस्ट एशिया में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है। एक तो ये कि अभी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं, क्या ये स्टेबिलिटी ला पाते हैं। अगर सिविल वॉर रहेगा तो उसका नुकसान हर जगह होगा। दूसरी चीज ये है कि HTS ग्रुप को हम देख रहे थे कि पहले ISIS के साथ में इनके काफी घनिष्ठ संबंध थे, उसी का एक एक्सटर्नल पार्ट था। दूसरा अलकायदा के साथ में काफी इनके वो रहे, फिर जमातुल नुसरा बना, फिर उन्होंने HTS किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं तो वहां पर उन्होंने एक अपनी साल्वेशन गवर्नमेंट बनाई और गवर्न किया उसको नॉर्मल की तरह। तो मैं हो सकता है कि उनका यही मॉडल रहेगा जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट काइंड ऑफ फिलोसफी, आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलेंगे तो वो उसके लिए रीजन में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है उस चीज का। और तीसरी चीज यह है कि ईरान जो सबसे ज्यादा इसमें लूज किया है, अगर ईरान फिर से उसको अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करेगा बाद में, या इसराइल ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है गोलन हाइट्स में, तो भी रीजन काफी डिस्टेबलाइज हो सकता है। और उसके चलते हमें देख सकते हैं कि देखिए, काफी जगह जगह जहां हमने देखा कितनी भी जगहों में सीरियन फाइटर्स गए बहुत सारे लड़ने के लिए, और जो ISIS वगैरह में भी दुनिया भर से इस्लामिक ग्रुप, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स आ गए। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा है इस तरह के सिचुएशन में। और जैसा हमने देखा कि तालिबान के बारे में लोगों को लगा कि इस्लामिक ग्रुप जो है, टेररिस्ट ग्रुपों को जो दुनिया कुछ बोलते रहे, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा ही हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो ये एक चीज ऐसी है जिसको हमें पूरी तरह से वॉच करना पड़ेगा कि जाते आगे बढ़कर ये किस तरह से यहाँ पर सरकार आगे बनती है, या किस तरह की ग्रुपिंग्स आगे आती हैं, और किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी काम करती है। आज जैसे 8 देशों ने, गल्फ के सारे कंट्रीज ने और रशिया ने मिलकर के आह्वान किया है कि पॉलिटिकल कंसल्टेशन शुरू होने चाहिए ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो देखिए किस तरह से ये सारे कंट्रीज सपोर्ट करते हैं, अगर वो इस बात से सहमत हैं कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है।
सर ट्रिगनर जी, आपको आगे का जो पॉलिटिक्स सीरिया में आप क्या दिख रहा है? इनफैक्ट सीरिया का आगे का जो रास्ता होगा कैसा होगा?
देखिए अब ये कह नहीं सकते कि क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना, क्योंकि एक ग्रुप नहीं है वहां पे, बहुत सारे ग्रुप हैं। जैसे वहां पर सीरियन नेशनल आर्मी है, सीरियन डिफेंस फोर्सेस हैं, और ये HTS जिसको हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो साथ मिलकर लड़ रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, और उन्होंने उसको अपना अपना एरिया कंट्रोल कर रखा है। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा होगा, या उनका आगे जाते हुए किस तरह की उनका बिहेवियर होगा। जैसे आज पता लगा है, भी रिपोर्ट आई है कि ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ है वहां पर, चाइना की एम्बेसी जो है वो भी है वहां पर, भारत ने भी अपने एम्बेसी के लोगों को और इंडियंस को बाहर निकलने की वो दी है। तो देखिए ना किस तरह से ये आगे बिहेव करते हैं उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि जब ये इस तरह के ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं तो वो पूरी तरह अपने सोल्जर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गवर्नेंस एक सबसे बड़ा इशू होता है। तो ये जब तक कुछ दिनों में पता लगेगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ पाते हैं, या किस क्या उनका आगे का प्लान है, किस तरह से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर में वो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि कितना इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आती है। और अगर वो बहुत ज्यादा जिहादी किस्म की मेंटेलिटी रखेंगे तो एक तरह से आपको दोबारा खतरा हो सकता है कि वहां पर जो आईसिस का ग्रोथ ऑलरेडी उस एरिया में हुआ है इस बीच में, वो और भी बढ़ सकता है। तो ये वो एक खतरे की बात काफी हो सकती है सारे रीजन के लिए।
आज जो दमस्कस में हुआ, जो हम लोगों ने देखा, उससे बड़ा संदेश हम क्या ले सकते हैं?
सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आपकी जो लोग हैं और या वो सरकार जो है वो लोगों की रिस्पॉन्सिव नहीं है उनकी नीड्स के लिए, उनके एस्पिरेशंस के लिए, उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, तो उस सरकार का कभी भी पतन हो सकता है। तो दूसरी चीज, अगर आप बाहरी ताकतों के बेसिस पे रूल करना चाहते हैं तो ये भी पूरी बहुत दिनों तक संभव नहीं है, ये एक दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज ये है कि आपके खिलाफत करने वाले को आप कम समझते हैं। मेरे को लगता है कि असाद ने ये सोचा होगा, वो छोटे से एरिया में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो चलने दो, और उसने कोई कोशिश नहीं की कि किस तरह इन अपोजिशन ग्रुप्स के साथ बात किया जाए ताकि कुछ कंट्री को आगे डेवलपमेंट किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ रूलर्स के लिए एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। आपके दुश्मन, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप किस तरह आगे बढ़ते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मैसेज सबके लिए है। और ये बात हर जगह, देखिए किसी भी मुल्क में आप देखें जहां पर इस तरह की सिचुएशन हुई है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि उस हर एक लीडर के लिए एक आई ओपनिंग मैसेज है, खास तौर से उन लीडर्स के लिए जो ऑटोक्रेटिक है। और देखा है हमने ये एक तरह से अरब स्प्रिंग में भी इसी तरह से हुआ था, और उसी का एक नमूना आज आपको देखने मिला।
एम्बेसडर ट्रिगनर जी, क्या असद का जो पतन हुआ है उसके बाद के घटनाक्रम जो अभी हो रहा है, इसका इसराइल गजा युद्ध पर कोई असर पड़ेगा?
देखिए इसराइल जो है वो सीरिया के खिलाफत करता था, जबकि हमने देखा है कि लगातार जो हिजबुल्ला के जो भी ठिकाने थे या सीरियन ठिकाने हैं उसके ऊपर, चाहे डमस्कस में हो या कहीं पे भी हो, इसराइल कंटिन्यूअसली अटैक करता रहा है वहां पर। दूसरी चीज, इसराइल ने गोलन हाइट्स को 1981 में मिला लिया अपने पास, 1967 में वो वॉर में जीते थे लेकिन उसके बाद 81 में शो कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प पहली बार जब आए थे तब उन्होंने कहा कि गोलन हाइट्स सीरिया का नहीं, ये इसराइल का हिस्सा है। तो अभी भी जो है वो गोलन हाइट्स में उन्होंने अपना बीफ अप किया है। तो अब खबरें ये भी आई हैं कि वो जो बॉर्डर है और जो बफर जोन है उसको उन्होंने ब्रीच कर दिया है उनकी फोर्सेस ने, तो वो भी अपनी थोड़ा और आगे तक का हिस्सा अपने कब्जे में करना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है। मेरा मानना ये है कि कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त पावर में आएगी वो इसराइल के साथ तब तक शायद अच्छा रिश्ता नहीं बना सकती जब तक कि गोलन हाइट्स और पैलेस्टीनियन इशू रिजॉल्व हो जाए। तो इसराइल के रिश्ते सीरिया के साथ ठीक होने में बड़ा मुश्किल है।
सीरिया की जो स्थिति है, इसका क्षेत्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर संभावित असर क्या हो सकता है, क्या आपको लगता है?
देखिए, सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, चाहे वो इराक हो, चाहे लेबनान हो, चाहे वो ईरान से जाना हो, तो वो एक तरह से इसका एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल है पूरे रीजन के अंदर। जॉर्डन नीचे एक दूसरा मुल्क है, वहां पर भी देखिए आप, तो एक सीरिया एक बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा, इराक, सीरिया और इजिप्ट जब गल्फ कंट्रीज के ऊपर उभरने से पहले मेजर पावर्स यही कंट्रीज थे, फिर इनका पतन हुआ सबका, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज ज्यादा पावरफुल हो गई है वहां पर। तो नेचुरली है कि आइसिस का जिस तरह से हुआ था लेवांत में, इराक और सीरिया के अंदर आपने देखा कि किस तरह से सारी दुनिया को एक साथ लड़ना पड़ा, इसमें आखिर इसमें ईरान और रशिया और अमेरिका सब एक साथ लड़े, तब जाके कहीं वो उसको कर पाए। तो अगर ये जो ग्रुप HTS है, जो उसकी फिलोसफी को, आइसिस की फिलोसफी को भी काफी हद तक मानता है और उसी से निकला है, उत्पन्न हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आगे जाते हुए। अगर ये बिल्कुल छोड़ करके सब कुछ अपने खाली सीरियन बनने की कोशिश करेंगे तो शायद डिफरेंट आउटकम होगा, लेकिन सिविल वॉर के चांसेस भी काफी हैं और वही एक बड़ा खतरा है जो सबके लिए होगा। उससे क्या होगा कि और ज्यादा रिफ्यूजीज बाहर जाते हैं, अभी तो सब लोग बड़े खुश हैं और वो सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वापस आ जाएंगे। जो 13 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज हैं टर्की में, लेबनान में और जॉर्डन के अंदर, तो वो सब वापस आना चाहते हैं। तो ये देखिए, देखना ये है कि किस तरह से सिचुएशन को जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज कर पाती है नई सरकार, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि रीजनल आउटलुक क्या होगा उसका। इस समय हम ये देख रहे हैं कि ईरान का सबसे बड़ा लॉस रहा है असाद के जाने से, और रशिया को भी काफी हद तक इसका नुकसान हुआ है।
एम्बेसडर ट्रिगैन जी, भारत हमेशा से पश्चिम एशिया में शांति के लिए दबाव डालता रहा, बोलता रहा। सो भारत के नजरिए से आप समग्र स्थिति को आप कैसे देखेंगे?
देखिए, भारत हमेशा से ही चाहता रहा है, क्योंकि ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, कि वहां पर शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता बड़ी आवश्यक है, क्योंकि हमारा खुद का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, और वो है एनर्जी सिक्योरिटी, है हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट, है हमारे 10 मिलियन से ज्यादा लोग वहां रहते हैं, तो कोई भी एस्केलेशन अगर वहां रीजनल होता है और बड़ा उसमें होता है तो हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो भारत हमेशा से ये कोशिश करता रहा, तो इसीलिए सीरिया भले ही सेंक्शंस में रहा हो या बड़ी काफी समस्या रही पीछे, लेकिन भारत ने हमेशा सीरिया को मदद पहुंचाई, सीरियन लोगों के लिए उनके हेल्प करी, उनरवा के थ्रू हो या सीरियन जो रिफ्यूजीज जॉर्डन में रहते हैं, मैं जब वहां पे था एम्बेसडर तब हमने असिस्टेंस देना शुरू किया उनको काफी हद तक। तो भारत का बेसिकली नजरिया यह है कि हम सीरियन लोगों की भलाई चाहते हैं, बड़ा वो चाहते हैं, तो कोशिश तो भारत की हमेशा से यही रहती है कि वहां पर शांति और अमन बना रहे, लेकिन बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं है। जैसा हमने देख लिया कि जिस तरह इसराइल हमास वॉर हो रहा है, इसराइल हिजबुल्ला का वॉर हुआ, हुतीज ने पूरा जो शिपिंग लेन्स है उनको बर्बाद कर दिया, तो अब ये लड़ाई दूसरी सीरिया में इस तरह और बढ़ गई है। तो सीरिया, लेबनान, लीबिया, जॉर्डन से आपका पैलेस्टीन इशू और सूडान, बहुत सी चीजें हाथ में नहीं है जैसा हमने देख लिया। तो जो चीज बहुत तेजी के साथ हुई है, रिजीम फॉल, ये अरब स्प्रिंग का एक तरह कंटिन्यूएशन था यहाँ पे, तो भारत हमेशा से ही चाहता रहा है, क्योंकि ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, कि वहां पर शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे।
एम्बेसडर ट्रिगानेट, हमने दमास्कस में अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखा। सीरिया के आगे क्या राह है, ये जो स्थिति क्या उभर के आ सकती है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। फिर भी सीरिया में उभरती स्थिति पर विस्तृत परिप्रेक्ष्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे सीरिया में बदलते हालात और पश्चिम एशिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।